भविष्य को समझो। महाप्रभु जी ने केवल मध्य संप्रदाय को क्यों ग्रहण किया, क्यों ग्रहण किया और किसको, किसी को क्यों नहीं ग्रहण किया? सब में तो एक ही तत्व है वैष्णव संप्रदाय में, बल्कि उन्होंने संन्यास लिया किससे? मध्वाचार्य जी ने किससे लिया? अच्युत प्रेक्ष से लिया, वो भी अद्वैतवादी सन्यासी थे। तो उनके संप्रदाय में क्यों नहीं हुए, किस लिए लिया, कारण क्या था? सहज में उपलब्ध वो सन्यास देने वाले थे, इसलिए उनसे लिए। किंतु उनका विचार नहीं ग्रहण किया, उनके विचारों का खंडन किया, उस संप्रदाय के सारे विचारों का प्रकाशानंद जी और साधन भट्टाचार्य जी के प्रसंग में सबको छीन लिया और इनके विचारों को लिया, इनके वैष्णवों के विचारों को लिया, जिन्होंने अपने अपने भाष्यों में ये सब दिए हैं विचार। किंतु उनसे भी वैशिष्ट एक अचिंत भेदा भेद वेदों के सार्वजनिक विचार का, वेद में कहीं अभेद और भेद दोनों है, तो दोनों में से क्या किया? एक दो गाय लड़ रही है तो एक को डंडा मार करके भगा दिया, वो गिर पड़ी घायल हो गई, ऐसे नहीं, उनको दोनों को मान्यता दे करके, घाट दे करके अलग, उसको घाट दे करके अलग कर, मारना नहीं है, दोनों ही पक्ष ठीक है, भेद वाला भी विचार ठीक है, अभेद वाला भी। महाप्रभु ने बीच का ये रास्ता निकाला। समस्त आचार्य में जो अपूर्णता थी दार्शनिक विचारों का जो भेद था उसको और अद्वैतवाद का खंडन किया, इसलिए अद्वैतवाद का विचार में लिया ही नहीं। महाप्रभु जी दक्षिण में गए समस्त मंदिरों में, यहाँ तक कि दुर्गा जी के मंदिरों में भी गए, वहां पर भी नित्य कृष्ण मीनाक्षी के मंदिर में, कन्याकुमारी के मंदिर में भी उन्होंने कीर्तन किए और सब लोगों को कृष्ण भक्त बनाए, किंतु उतना उल्लसित नहीं हुए। किंतु जब गुरुपी में गए और बाल गोपाल की मूर्ति देखी, उल्लास से रस से भर करके एकदम कीर्तन करते 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 हमने क्यों क्यों किया? यहाँ उपास्य उनकार उनका एक था। महाप्रभु जी ने कहा कि ये गुणराज खान कैल
श्री कृष्ण विजय
कहाँ से आखे एक वाक्य उसमें एक वाक्य लिखा कि नंदनंदन हमारे प्राणनाथ हैं। इस वचन को सुन करके उस पुस्तक में जो ये था, महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे वंश में मैं अपने को भेज दिया, तुम क्या और तुम्हारे परिवार के लोग क्या, तुम्हारे गांव के जो कुत्ते हैं हम, मैंने उनके हाथ भी अपने को भेज दिया, किस लिए? नंदनंदन हमारे प्राणनाथ है, ये जो कहेगा वो जो लिखेगा मैं उसको अपने को भेज दिया। तो महाप्रभु किसके संप्रदाय में जाएंगे?
नंदनंदन उपास्य हो
गए, जो नंदनंदन उपास्य हो गए। महाप्रभु समस्त दक्षिण में परिभ्रमण किया, किसी भी मंदिर में उनको कृष्ण की विग्रह कोई नहीं मिली, मिली क्या? दुर्गा जी की, काली जी की, हनुमान जी की,
शिव जी,
शंकर जी अधिक रूप में, गणेश जी बहुत, मीनाक्षी में देखा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर ऊंचा मीनाक्षी जी का मंदिर है, कन्याकुमारी का विशाल मंदिर देखा, किंतु उतने उल्लसित कहीं नहीं हुए। जब अपने प्राणनाथ को देखा कहाँ? गुरुपी में देखा। कैसे देखा?
मंथन दंड नाचते हुए
देखा, गदी मंथन दंड दिए हुए, माने क्या?
आनंद,
गदी मंथन नहीं कर रहे कृष्ण, मैया का जो गति मंथन कर रही थी दूध पीने के लिए, वो गति मंथन अपने हाथ में रख लिया, मैया भी इसको अभी रहने दे, हमको दूध पिया, इसलिए नहीं कि गति मंथन लेकर के वो मथ रहे, कृष्ण नहीं मथ रहे, गोपियों का, जसोदा जी का दधि मंथन था, मैया भूख लगी है मुझे। ये जसोदा जो नंदन है, कहीं भी दक्षिण भारत में उनको ये मूर्ति कहीं देखने के लिए नहीं। जब उन्होंने कृष्ण के संबंध में ये सुना कि कृष्ण ही मेरे प्राणनाथ हैं, ये जो कहेगा उसके वंश में अपने को बेच दूंगा, तो वैसी मूर्ति को देकर के महाप्रभु जी क्या करेंगे? जो पूजा कर रहा है उसी मूर्ति की जो पूजा कर रहा है उसको कृष्ण महाप्रभु जी क्या करें? कहे तुम्हारे वंश परंपरा में, तुम्हारी शिष्य परंपरा में सबके हाथों मैंने अपने को
बेच दिया।
इसी को जी गोस्वामी ने षट संदर्भ के प्रथम संदर्भ में, सप्त संदर्भ में उन्होंने लिखा है, वृद्ध वैष्णवानां,
वृद्ध वैष्णव
कैसे कैसे शिष्य परंपरागत विजयध्वज व्यास राय व्यास तीर्थ इत्यादि सभी लोगों के विचारों को ग्रहण करके मैं इसका संग्रह सत्व संदर्भ में, इसे महाप्रभु जी की संप्रदाय में आएंगे और मसला करेंगे, इसके अतिरिक्त तो कहीं वो चीज नहीं है, इसी को देखकर। इसलिए उपास तत्व का जो तारतम्य यही संप्रदाय के भेद का ये वैशिष्ट का ये कारण हुआ और कुछ नहीं। तत्व के भेद से उपास्य उपासना ये सब तो हमारे समस्त चारों वैष्णव संप्रदाय में एक समान है। कृष्ण उपास्य हैं, जीव उनका उपासक, ये चारों में है। थोड़ा सा इधर उधर होने से संप्रदाय का भेद नहीं होता। संप्रदाय भेद का मूल कारण है उपास्य अथवा परतत्व के की उपासना का तारतम्य या उसकी अनुभूति के ऊपर। उस कृष्ण को इन्होंने अपना प्राणनाथ मान करके उसकी उपासना कौन मध्वाचार्य उसी को उन्होंने कहा नंद नंदन हमारे प्राणनाथ उनके यहाँ पे। तो जो कोई ये सुनेंगे महाप्रभु या महाप्रभु के अंगत है सुनेंगे, ये ब्रजेंद्र नंदन जो है आराध्य भगवान ब्रजेशम वृंदा, इस श्लोक को हम लोग क्यों प्रमाण मानते हैं? इसीलिए इसमें कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन ही आराध्य और गोपियों ने उनकी जैसे आराधना की उसमें ये चीज को माना गया। वृंदावन धाम भी उसी रूप में हमारा उपास है, ये उसमें है ना, इसीलिए हमारे संप्रदाय के लोग इस श्लोक को प्रणाम। ये किसका श्लोक है? खबरदार मत कहना, मैं तो गुरु महाराज हमारे जी वो काम काट लेंगे।
आपने क्यों लिख भाई, आपका काम नहीं काटे ना आपने?
सुना लिखा है
आज ही
कुछ आधुनिक लोग मध्य संप्रदाय के अंतर्गत महाप्रभु जी नहीं है इसीलिए वो नया खड़ा किया है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का नहीं है। ये किसका है? श्रीनाथ जी का रहा था। तो आज तक रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका उल्लेख क्यों नहीं करते? उनसे तो बहुत पहले के हैं और इतना अच्छा श्लोक वो ग्रहण नहीं करते? नहीं, ये गलत है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का श्लोक, इसमें तनिक संदेह मत रखना। ये उसी को उलाक पुलाक करके ये लोग कह रहे हैं, ये लोग चाहते हैं कि महाप्रभु जी का संप्रदाय से मध्वाचार्य का संबंध, इसलिए बलदेव प्रभु जी को
याद है।
इसलिए तो अब देखो उपास्य का उपासना का और उपासक का इसमें थोड़ा सा अदल बदल हो सकता है, कोई भी बात नहीं, किंतु कृष्ण ही परतत्व हैं इस चीज को मान करके और इसके तात्पर्य को क्या कहां तक ले आए? कृष्ण जो हमारे हैं दशरस के कम, उससे अधिक सखरस के, सखरस से अधिक बात्सल्य के और बात्सल्य से भी अधिक उत्कर्ष स्वकीय रस मधुर रस के और उससे भी अधिक माधुर्य रस के, माधुर्य रस में भी बहुत तारतम्य। ये हमारे कृष्ण है, ऐसा उत्कर्ष कहीं नहीं है। इन उत्कर्ष को जो मानता है वो एक संप्रदाय। मध्वाचार्य ने भी अत्यंत भेदाभेद माना है, वही माना है, इसलिए हम लोग तत्वतः उन्हीं के संप्रदाय। महाप्रभु जी दक्षिण देश में गए, उन्होंने तत्ववाद का कुछ खंडन किया है ऐसा लिखा है। इन लोगों ने कहा उसमें चैतन्य चेतावनी के रूप में नहीं है, तत्ववादियों से इनका विचार हुआ ना, तत्ववादी। अच्छा जीव गोस्वामी ने अपने को क्या कहा है?
तत्ववादी।
तत्ववादी नहीं कहा भागवत में? तत्ववादी ने बदंति तत्व विद, इसलिए जीव गोस्वामी भी तत्ववादी है ना। महाप्रभु जी क्या है? तत्ववादियों के भी उपास्य हैं। अब तत्ववादियों का गुरु कौन है? मध्वाचार्य। जी गोस्वामी ने कहा जे तत्ववाद के गुरु वृद्ध वैष्णवानंद मध्वाचार्य और उनके शिष्य समेत के विचारों को मैं अच्छी तरह से भली भांति पर्यालोचना करके ये सब कर। तो जी गोस्वामी हुए तत्ववाद, तत्ववाद को माने। मध्वाचार्य तत्ववाद के गुरु और तत्ववाद के उपास्य कौन हुए? और उन्होंने भी प्राकरण का रूप में भेद स्वीकार करते ही करते भी अत्यंत भेदाभेद माना, इसलिए महाप्रभु जी ने संप्रदाय को ग्रहण किया। तो अभी इसमें तात्पर्य है उपास्य, उनका उपास्य क्या है? दधि मंथन दंड धारण करने वाले बाल गोपाल जी हैं, और हमारे उपास्य वो बाल गोपाल से लेकर किशोर कृष्ण तक नंद किशोर तक हम लोगों के उपास्य हैं, कि उसी नंद किशोर में ये सभी हैं। इसलिए ये समय विचार में केवल उपास्य के अनुभूति का तारतम्य ही संप्रदाय का भेद का मौका है, इस चीज को समझें। इसी उपास्य के तारतम्य को ये सनातन गोस्वामी देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, और किसी भी संप्रदाय में ऐसी संभावना क्या कह रहे हैं? जगत बहुजन्म कृत छतो, ये कृष्ण की चरण धूलि को बड़े बड़े योगी लोग कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों जन्म तक कठोर साधन के द्वारा जिनके चरण की धूलि को आज तक प्राप्त नहीं हो सके हैं, इनके चरण की धूलि कृष्ण कृष्ण के अंश के अंकों का भी नहीं पा सके, ये सब योगी ब्रह्मज्ञानी तपस्वी ये कोई भी कोटि कोटि वर्ष तपस्या करके भी उस कृष्ण की चरण की धूलि का खोज नहीं पा सके, और उनके उस जिसकी चरण की धूलि है उन कृष्ण के साथ में ब्रजेंद्र नंदन के साथ में बराबरी को खेल धूल करते हुए अपनी आंखों की ओट से कहीं बाहर नहीं जाने। यदि एक सेकंड के लिए कृष्ण कहीं छिप जाते हैं, अहम पूर्वम महम पूर्वम कह करके दौड़ते हैं, मैं पकड़ूंगा कृष्ण को, मैं कितना कृष्ण के प्रति ममत्व भाव है। ब्रह्मवादियों का ब्रह्म के प्रति इतना ममत्व होता है, ममता हो ही नहीं सकता, क्यों? उनका रूप नहीं है, गुण नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, निर्विशेष है, इसलिए उनकी ममता हुई, उनकी ममता मैंने निष्ठुर हो गए। निष्ठुर कौन होगा? जिनमें कोई भाव नहीं है वो निष्ठुर, उनमें कोई भाव नहीं है इसलिए वो निष्ठुर है। ये लोग ये कृष्ण और कृष्ण के अवतारों का और सब चीज का तात्पर्य दिखला रहे हैं। ये कृष्ण कैसे हैं, कैसे ये कृष्ण? अब उनकी चरण की धूलि को बतला रहे, कृष्ण को छोड़ दो, कृष्ण बहुत दूर की बात है, बहुत ऊंचे, उनकी चरण की धूलि को योगी ज्ञानी व्रताचरण करने वाले एक अंगुष्ठ पर रह करके खड़े रहने वाले नीचे ऐसे अंगूठा कर दिया, एक ऊपर खड़ा रह गए, हवा पानी ये सब खाना पीना सांस लेना बंद करके हजारों जन्म लाखों जन्म तक तपस्या की और कृष्ण की चरण धूलि को उठा, कौन सी चरण की धूली? हरे कृष्ण की चरण की धूली जब नटवर के शिव के रूप में कुंजों में गोपियों के साथ में लीला कर रहे थे ना? वहां पर कृष्ण राधा जी की सेवा कर रहे हैं, परिचर्या कर रहे हैं, पलोटिपायन राधिका जी के चरणों को और राधिका जी ऐसे ऐसे कर रही हैं,
हरि हरि जाहि माधव
जाहि जाहि माधव
माधव जाहि माधव
अथवा जब किं करी सुबहुसा फलुसा वहां की चरण की धूली मत कहो, प्रणाम करो बहुत ये बात मत कहो, ऐसी धूली तो परम भक्त नारद इत्यादि के लिए भी सुलभ नहीं है, इन दुर्भागा उन लोगों के लिए तो बात क्या, जो कि तपस्वी कर्मी इनमें ममता और भक्ति ही नहीं है, ये सब चीज कैसे मिलेगी? भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है भक्ति, वो भी साधारण वृत्ति नहीं, उनकी हृदय और संबित शक्ति की सार होता है, वो यदि कोई आश्रय किया, वो जहां पर जिसको आश्रय भगवान ने करा दिया है तिथि कृपा करके वो इसको अनुभूति करें, इसलिए यहाँ पर बात मत करो ऐसे कृष्ण। अच्छा तो छोड़ देते, वैसी चरण धूली जो जसोदा मैया जी अपने आंगन में खड़ी हैं और कृष्ण दूध के लिए ललक रहे हैं, मैया मैं दूध पान करूंगा तू मेरी गोदी में चढ़ेगी चढ़ूंगा, और मैया आंगन से कहेंगे नहीं तुम गंदे लड़के हो चोर हो, तुम बहुत जल्दी गंदे हो जाते हो, अभी स्नान किया अभी गंदे हो गए, और वो रो रहे कर रहे हैं खजा रोते रहो, वो ब्रह्म रो रहा है पर ब्रह्म रो रहा है, जहां अंगुल में धूला में वो पलोट रहा है उस वहां की धूली की मैं वंदना करता हूँ, एक खबरदार है समझ कहना, ये योगियों के लिए संभव नहीं, योगी ज्ञानी तपस्वी कर्मी ये सब करोड़ करोड़ वर्ष तक ये तपस्या करेंगे तभी नहीं, जब ब्रह्म हरुद्ध सुपनार्द भिष्ट मुक्ति आलक्षितो न सहसा पुरुष सुपस्य सप्ताह वशी कर्ण चरण मन, अरे ये तो जो चरण की धूली है इस चरण की धूली से कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं राधिका जी के संबंधी, या यशोदा मैया वाला भी रहेगा जहाँ पर कृष्ण गड़ागड़ी दे रहे हैं लौट रहे हैं भूमि में वो चरण की धूली बहुत ये नहीं, तब यहाँ पर का प्रसंग सखाओं के साथ में वन में खेल घूमने के लिए गए, गैया चल रही हैं, मैं तो उदार बेनुस्व नहीं कलपदई तनभित्य सख्त अस्पंदनम गतिमता नाम निर्जोग लक्षण योग, कृष्ण ने गैया को नोने की उनके पैरों को बांधने की रस्सी को ले करके ऐसा लगा रहा बांधा पकड़ी के ऊपर, पगड़ी कैसी है जरा तीछे टेढ़ी पगड़ी है जरा बाएं की तरफ में झुकी और उसी पर मोर पंख ऊपर में झुक रहा है, गले में बलमाला है, हाथों में बंसी, लाखों लाखों गायों को और गोपों को लेकर के एक बंसे फलमिदम न परमिदम सख्त पशु देश तो वयस्य वैश्यों के साथ में जाए, इन कृष्ण की चरण धूली, चरण की धूली मैंने उनके चरण का छाप जहां लग गया है वहां की धूली, कृष्ण का डायरेक्ट चरण की धूली जो लगी हुई है नहीं, जहां जहां पर उनका छाप कहां कहां छाप है वो चरण में जमुना के किनारे उपवनों में गोवर्धन में जहां जहां वो गाय भांडीर बन में वहां की एक धूली यदि उड़ करके कदम्ब के वृक्ष पर या घासों पर कहीं चली गई है वो कहीं से एक यदि हो उसकी मैं वंदना करता नहीं, ये उनके लिए संभव नहीं, ब्रह्मवादियों के लिए चरण की धूली वो भी उड़ करके आकाश में गई वहां से कहां गई कदम्बादी वृक्षों पर कमाल के वृक्षों में, उस चरण की धूली उसकी महिमा ये लोग अनुभव करेंगे। उस धूलि में क्या है, कृष्ण की ये समस्त लीलाएं, उस लीला उस धूलि की एक कण की सेवा करने से क्या होगा, वो धूलि जिस लीला संबंधी है ना, कृष्ण का मयूर पंख जैसे देख करके भक्त लोग अचेत हो जाते हैं। क्यों? वो लीला में जहाँ पर के कृष्ण गायन कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रही हैं, मयूर भी वहां पर नृत्य कर रहे हैं, उन संबंधी को जहाँ पर कृष्ण उनके चरण पंखों को, इसलिए उसको देख करके मुरारी गुप्त की कौन थे, एकदम मुकुंद जी एकदम गिफ्ट भाव में जी, इसलिए उस चरण की धूली को यदि कोई देखे महिमा क्या वर्णन कर सकता है कोई, किम वर्णन थे, इन लोगों के लिए संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं। तो कृष्ण के चरण में संलग्न जो धूली है उसमें से एक धूली की वंदना करने योग्य है, ये चरण की धूली छिटक करके गई कहाँ, वो चरण की चिन्हों में, और वहां से उड़ करके गई कदम्बादी वृक्षों पर यात्री लोग, और वहां से एक धूली यदि हवा में उड़ करके चली वो भी इन लोगों के लिए मशहूर नहीं है, संभव नहीं है पाना उसको भी, क्यों उनको आने नहीं देंगे ब्रज में, जो वो ब्रज की धूली उनको लग जाए, इसलिए यहाँ के जितने लोग हैं बड़े सौभाग्यवान हैं, वो धूली किसी न किसी रूप में मिल जाएगी, उन ज्ञानियों को नहीं मिली, क्यों भगवान की शक्ति अचिंत है, लीला शक्ति भी अचिंत है, धूली भी अचिंत है, वो जान बुझ करके उड़ेगी उन पर नहीं जाएगी, किस पर जाएगी, भक्तों पर, यहाँ भक्त लोग हैं जिसके हृदय में स्वरूप शक्ति की वो वृत्ति है, जहां जैसा जिसका होता है ना, आज यहाँ पर मान लिया कि जैसे एक बाघ खड़ा है यहाँ, उधर में मनुष्य खड़े हैं, मान लिया कि कोई बीच में आदमी है, किधर में जाएगा, बाकी तरफ में जाएगा ना, स्वाभाविक रूप में किसके तरफ में, मनुष्य में कोई अंग्रेज है और कोई हिंदुस्तानी है तो किधर जाएगा, तो हिंदुस्तानी होगा, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान में भी अपने भाव वाला किसके तरफ में जाएगा, अपने भाव वाले, अपने भाव वाले होते हुए भी अपना घर का कोई व्यक्ति होगा तो, अच्छा अपने घर वाले भी व्यक्तियों में भी बहुत से हो, अपना बेटा जहां हो क्या करे, किधर जाएगा, और यदि उसकी पत्नी खड़ी होगी ना तो किसके पास जाएगा, बेटा को भी छोड़ करके, ऐसा स्वभाव है प्रेम, इसलिए वो चरण धूली निर्जीव नहीं है, निर्विशेष नहीं है, इसलिए जान पूछ करके उन्हीं पर लगेगी जिनके हृदय में कृष्ण की भक्ति है, ये सब संप्रदाय, इसी को ये कथानक के रूप में, उपाख्यान के रूप में श्रीमद् भागवत का श्लोक लेकर के उपास्य का ही तात्पर्य और उनकी अनुभूति के ऊपर नहीं सब कुछ निर्भर करता है, ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में है, किंतु किसी संप्रदाय ने इन सब चीजों को ग्रहण नहीं किया, जैसे कि सनातन ने और हमारे गोस्वामियों ने, यह भगवान की उन पर बहुत विशेष है, इसी को बतला रहे हैं, इसी को अब देखिए, अब संक्षेप में बतला है, कृष्ण की धूलि कण को ग्रहण करने का सौभाग्य किन वर्ण थे, मैं क्या कहूँ धूली की बंद चरण की धूली की बंद, कौन सी कर्ण कृष्ण के चरण की धूली जो कृष्ण के चरणों में संलग्न है, उस धूली की तो महिमा बतलाओ बतलाने योग्य तो कोई नहीं, जो कृष्ण के चरण की धूली लगी है पैर, दूसरी तब उस धूली की जो चरणों का छाप जहां लगा है और छाप में जो धूली है उसे तुमका संबंध था, अभी नहीं संबंध है, तो वहां की धूली खबरदार उस धूली की भी वक्त हो, यद्यपि दूर है तभी संलग्न है तभी उसकी, तो उसको छोड़ दो, वहां से उड़ करके गई हवा में और कहां गई, कदम इत्यादि वृक्षों के में लग गई, उस धूली की भी नहीं हो सकता, ये तीन प्रकार का बतलाया, उसमें भी बतलाया विशेष करके गोपियों संबंधी जो चरण की धूली उन कुंजे इत्यादि में लीलाओं की, उसकी महिमा अपरंपार है, इसकी वर्णन करना साध्य नहीं है, जो ये सब चीजों का। इसलिए चरण की धूलि के प्रति इतना महिमा जो बतला करके कृष्ण के तरफ में उपास्य तीस श्रेष्ठ का बतला है, इनके तरफ में यदि आकृष्ट कोई हुआ तब तो वो तत्व से कभी भी च्युत नहीं होगा, अनन्य रूप में कृष्ण का भजन करेगा। जब धूलि की महिमा इतनी है तो कृष्ण की रूप की कैसी महिमा होगी, कृष्ण के माधुर्य की, कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम का, ये सब चीजें बहुत दूर की जाए, ऐसा समझ करके कृष्ण का अनन्य रूप। और लोगों की और भगवत तत्व हैं, किंतु इनकी महिमा उतनी नहीं जितनी कृष्ण की है, तो वही बतला रहे हैं। यद पाद कांशु ऐसे भक्तों को जो उनके साथ में खेल रहे हैं, जो कृष्ण को एक क्षण के लिए भी देखना नहीं भूलते, यदि घर में सोते हैं तो कैसे जाते हैं, जोग माया के प्रभाव से तब अपने अपने मैयाओं के पास में जाते हैं, जोग माया यदि नहीं करती ना तो नहीं जाते, इसलिए जोग माया के प्रभाव से उनको छोड़ करके अपनी मैयाओं के पास में, वो बछड़े भी अपने अपने घरों में गायों के पास में जाती हैं उसी तरह से जोग माया के पास, नहीं तो कोई नहीं जाता, कृष्ण को कोई छोड़ ही नहीं जाता, वन के हिरण भी उनको छोड़ना नहीं चाहते, उनको भी ये सब जोग माया के प्रभाव से उस समय की लीला होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य इत्यादि का अनुष्ठान, व्रत का अनुष्ठान करना और बहुत तपस्या व्रत के द्वारा भी कृष्ण के इस धूलि को और कृष्ण के ऐसे दर्शन को रूप माधुर्य को नहीं पाएगा संभव। वो कैसे होगा, जो लोग ऐसा उनका भजन करने वाले हैं, सेवन करने वाले, जैसे ये सखा लोग जसोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां इस भाव में विभावित होकर के कृष्ण को इतना प्यार करती हैं, यदि उनकी सेवा की जाए तो ये संभव, और दूसरा कोई पाए, इसी का नाम है राधा। वही सच्चिदानंद घनमूर्ति जो सबके समस्त इंद्रियों के अतीत अतीत है और उनकी विभूतियां अंशमता यहां की साक्षात नारायण को भी नहीं, स्वयं कृष्ण चंद्र को निरंतर ये लोग भी नहीं, ये देखना चाहते हैं, लक्ष्मी जी भी देखना चाहती हैं, इन लोगों के लिए भी संभव नहीं है। बामन जी कृष्ण का दर्शन कर सकेंगे कृष्ण रूप का एक तत्व होने पर भी, उसी तरह से नारायण इत्यादि जितने भी तत्व हैं, कोई भी तत्व उनकी बराबरी क्या उनके भावों को ग्रहण कर नहीं कर सकते, जब कर लेंगे तब तक कृष्ण बन जाए, नहीं करते हैं इसलिए वो अनुसव कला के रूप में। स्वयं भगवान कृष्णचंद्र को जो निरंतर अजातिक रूप में निरंतर एक निमेश भी उनका बंद हो जाता है उनके दर्शन में, इन सखाओं से भी किनका अधिक भाव होता है, गोपी एक निमेश को भी वो दंड देना चाहते, और गणेश के बनाने वाले को भी दंड देना चाहती हूँ, क्यों बनाया कृष्ण का इतना सुंदर रूप, एक तो छोटी छोटी दो आंख बनाए और उसके ऊपर में भी ये निमेश पलक रख दिए, और वो पलक ऐसे निगोड़े बार बार गिरते हैं, हम यदि होती तो ब्रह्मा को ऐसा बना देती, ऐसा ब्रह्मा जिनकी सहस्त्र आंखें होती किसी पर फलक नहीं होता, कोई फर्क नहीं आता और दिन रात देखते
हैं। ब्रह्मा तो मर जाए हम लोग सिस्टर दिखा दूंगी जैसे हम जाए।
आज जो अतीन्द्रिय पुरुष हैं, अतीन्द्रिय हैं, समस्त इंद्रियों के अति ज्ञान से भी अति आज वो परब्रह्म इन गोप बालिकाओं के नेत्र के गोचरी भूत होकर के अर्थात उनको अपना दर्शन देकर और उनसे खेल रहे हैं एक साथ में। ऐसा कौन वर्णन कर सकता है जो देखेंगे सो तो और देखेंगे कौन वो सखा लोग तो सखा दो कलम धर करके वर्णन करेंगे उनको फुर्सत नहीं है खेल के अतिरिक्त क्रीड़ा का अतिरिक्त तो फुर्सत नहीं इसलिए ना तो कृष्ण ही कलम धरते हैं और न सखा लोग न गोपियां ही जो भक्त लोग थोड़े से उनके लीला चित्र का आस्वादन करते हैं उनमें से कोई होता अपना बाह्य ज्ञान आने पर वो भी कलम नहीं पकड़ते वर्णन करते हैं और दूसरा कोई इसलिए व्यास जी ने वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया गणेश को कहा तुम जरा लिखो तो इसलिए दूसरा कोई ऐसा वर्णन नहीं कर सकता और उनको अपने इष्ट देव में मानना ये साधारण बात है। इसलिए निसंदेह रूप में कृष्ण के चरणों में एकांतिक भक्ति किया जाए जैसे ब्रजवासी लोग करते हैं तब जन्म जन्मांतरों में कहीं हम लोग उनको पा सकते हैं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दो दिन की चांदनी वाली चीजें अर्थ संसारिक वस्तुएं माया ने पैदा कर दी है जीव को भ्रमित कराने के लिए यदि इसमें जीव भ्रमित हो गया तो वो अरे कहो जी कैसे ये हो गया कहे पूर्व जन्म के कर्मों के फल से ही पुण्य राशि से मिल गए क्या पुण्य राशि से ऐसे कृष्ण मिलेंगे ऐसे नहीं पुण्य से तो भक्ति भी नहीं होती है पुण्य का तो भोग किया और वहां से फिर गिर पड़े लुढ़क कर ज्ञान से होगा जिसको वेदों का ज्ञान होगा उसको भक्ति हो जाएगी नहीं कैसे होगी जिसको भक्ति है उसके समझो किस में भक्ति है कृष्ण में परिपूर्ण रूप से और उनके द्वारा उनके भक्तों में संक्रांत की हुई भक्तों में उनके समझो भजन में भक्ति इसके कारण कृष्ण भी नहीं है कौन है भक्त ही है जिनमें ये भक्ति रहती है तो कृष्ण में भक्ति नहीं है वो भक्ति नहीं है जिसे कि कृष्ण को पाया जाएगा कृष्ण को जिन्होंने पाया है उनके अंदर में जो भक्ति है उसका अनुसरण करने से उसके प्रसन्न होने से तब कृष्ण को
आश्रय जाते हो
इसीलिए हमको आश्रय से जाती है इसलिए
कृष्ण तो आश्रय भक्ति
आस्वादन करने के लिए उसका विषय बनने आश्रय बनने के लिए नहीं बस तादर की सौभाग्य ये उनका यह सौभाग्य कि पूर्व जन्म के कर्मों के फल से हुआ नंद यशोदा जी अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उनके माता पिता बने और ये पूर्व जन्म के पुण्यों के वजह से ये लोग सखा बने हैं या गोपियां अपने पूर्व जन्म के किसी तपस्या इत्यादि के द्वारा फल से कृष्ण को पाया है नहीं क्या है राधा कौन तपस्या की
राधा तू बड़ भागी
के तारुण तरण
से तेरे अधीन
कौन तपस्या की राधा जी ने वैसी तपस्या हम भी कर लेंगे अरे तपस्या से ये सब नहीं होता है व्रत से नहीं होगा ये कैसे होगा जो उनके भाव में विभावित होकर के वैसे ही भजन करे तब होगा तो वो भी नहीं होगा उनके अनुगत्य में कृष्ण की वो सेवा पाएंगे वैसी सेवा उनके लिए नहीं संभव है इसलिए अनुगत्यमय भक्ति होनी चाहिए और भी देखो पूर्व जन्म कृत पुण्यों से तो भक्ति भी नहीं होती है भक्ति तू भगवत संगे न परिजाय
भक्त संगे
संगा प्राप्त थे तुम भी पूर्व
प्रकृति संचित
पूर्व संचित भक्ति कैसे होगी भक्तों के संग में, भक्तों का संग नहीं मिलता किसको मिलेगा। देख रहे हैं कि गली गली में फिर रहे हैं, नहीं ऊपर श्रद्धा ही चाहिए, किनको श्रद्धा होगी। पूर्व जन्मार्जित यदि सुकृति है तो साधु संग मिलेगा, और नहीं तो साधु संग मिल करके भी उनकी बातें समझ में नहीं आए, बैठे हैं सुन रहे हैं धरने में, ये कैसे होगा समझे उनकी बातें, कोई समझता है कोई नहीं समझता कैसे। पूर्व जन्म के संस्कार के ऊपर में सुकृति को नहीं, कोई आदमी झट समझ जाता है, कोई दस बार बोलने पर नहीं समझे, इसका कारण क्या सुकृति का अभाव। इस जन्म तब ऐसा सुकृति करो, सुकृति कर, कैसे करे श्रद्धा रहे तब तो वैसी, खाने पीने में रुचि है सांसारिक वस्तुओं में रुचि है तो कैसे होगा। इसलिए उनके संग में रहने पर वैसे ही अनुसरण करने का लोग जिसके विषय होगा वो तो साधु संग पाएगा, उनकी बातों को समझ करके झकझक करके। विद्या में भी ऐसे ही संस्कार होते हैं, बहुत से लड़के बिना पढ़े लिखे फर्स्ट कर जाते हैं, अब बहुत से लोग दिन रात रटंत विद्या करते करते भसंत हो जाता है तभी वो पास भी नहीं हो पाते। एक लड़का हमारे यहाँ था 18 वर्ष मैट्रिक में फेल किया,
18 बार
तो उसने कहा 21 बार में हम जब इच्छा समय तभी हम करेंगे मजदूरी के समय
17 बार
हो गया, वो बुरा आदमी हो गया तभी वो हम परीक्षा देते ही और पास ही नहीं, अंत में पास नहीं कर। यहाँ पर कहा है दृष्ट महो किम वर्णते दृष्ट महो ब्रजौ प्रशांत, ब्रजौ प्रशांत ब्रज के वासी जो हैं उनकी दृष्ट माने सौभाग्य महिमा, उनका महिमा का कौन वर्णन कर सकता है, अतः कोई भी। फिर कहते हैं दिष्टम हो वर्णते अदिष्टम हो अले आया, अदिष्ट माने और वहां पर लुप्त होकर के केवल ते है ने इसलिए लुप्त हो गया, इसलिए वर्णते अदिष्टम हो वहां दिष्ट नहीं है दृष्ट है, वहां पर किसी किसी में अदृश्य दे अदृष्टम हो, तो दृष्टम माने क्या सौभाग्य, अदृष्ट माने
अदेखा,
अदृश्य इसका अदृश्य ही ऐसा गंदा है ये
भाग्य ही कपाल,
इसलिए यहाँ पर भाग्य अदृश्य माने भाग्य क्या स्वरूप शक्ति की वृत्ति का, कृष्ण ने अपने आप कृपा करके ये भाग्य बनाया कि हमारा नित्य परिकर रहे, इसी तरह होगा और दूसरा कोई उपाय नहीं, साधन के द्वारा वैसा सिद्धि सखाओं जैसा नहीं होगा, ये कैसे होगा। अदृश्य अदृश्य माने अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति माने स्वरूप शक्ति, कृष्ण ही अपनी स्वरूप शक्ति से सखाओं के रूप में बदले हुए हैं, ये उनके नित्य परिकर हैं, उनके काय भी हैं, इसलिए उनके लिए सौभाग्य है दूसरों के लिए नहीं। हाँ दूसरों के लिए साधन सिद्ध होगा साधन करके, किंतु उनकी पंक्ति में नहीं है कुछ, उसमें नहीं पंक्ति का ये अदृष्ट के द्वारा एक और भी है, अर्थात ऐसा भाग्योदय कहीं नहीं देखा जाता है, ये कृष्ण की स्वरूप शक्ति या कृष्ण की अहित की कृपा से ही ऐसा है। भक्ति मात्र को ऐसे ही समझ लेना, किसी को होती है किसी को नहीं होती, क्यों, ये भगवान की कृपा है। कैसे कृपा है, किसी जीव का हृदय किसी प्रकार से भक्तों की भगवान की कोई ज्ञान बुझ करके अनजान में कैसे भी सेवा कर, बस वो शक्ति द्रवित होकर के अर्पण, और दूसरा कुछ ऐसे नहीं जो कोई साधन करके भक्ति कर लेगा और सर्व शक्ति की वो क्या विशुद्ध सर को आ जाएगा, ये निषा कृपा सिद्ध भक्ति या तो कृष्ण या
भक्ति पर,
साधन करना भी भगवान की कृपा है, किसी को भगवान मालपुआ राबड़ी बना बनाया खिला देते हैं और किसी को
लकड़ी,
कंडे,
तवा,
घी, कड़ाही, आग, चूल्हे चूल्हे देकर तुम रसोई बना करके खा लो और किसी को कहते हैं कि बना बनाई माल है खा लो। बना बनाई जो दिया वो तो एकदम साफ सर है और अपने बनाएगा कभी हाथ जलेगा, समय लगेगा, किंतु ये दोनों ही कृपा है। साधन करना भी भगवान की कृपा से ही, भक्तों की कृपा से होगा और वो मिल जाएगी। भक्त कितना बचा?
छठा 40
और 40 हो गया। तो पहले क्यों नहीं बताया?
पहले कितना बार बताया था, देखा ही नहीं।
आज यही तक पंच का।